नमस्ते, मैं आरव हूँ। नाइन नार्ट्री के पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज मैं इस पुस्तक का सारांश और समीक्षा करूंगा। जोसेफ ए शुम्पिटर की कैपिटलिज्म, सोशलिज्म एंड डेमोक्रेसी अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र और राजनीतिक सिद्धांत के संगम पर लिखी गई 20वीं सदी की प्रमुख कृतियों में है। पहली बार 1942 में प्रकाशित यह पुस्तक पूंजीवाद को केवल कीमतों, उत्पादन और बाजार संतुलन की व्यवस्था नहीं मानती। शुम्पिटर के लिए यह निरंतर परिवर्तन की प्रक्रिया है, जिसमें नई वस्तुएं, उत्पादन विधियां, बाजार और संगठन पुराने ढांचों को विस्थापित करते हैं। इसी प्रक्रिया को वे क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन कहते हैं। पुस्तक का उद्देश्य पूंजीवाद की उपलब्धियों का उत्सव मनाना भर नहीं, बल्कि उसकी आंतरिक कमजोरियों, समाजवाद की प्रशासनिक संभावनाओं और लोकतंत्र के वास्तविक संचालन को समझना भी है। शुम्पिटर कार्ल मार्क्स के विश्लेषण को गंभीरता से लेते हैं, पर उनके निष्कर्षों से अलग रास्ता बनाते हैं। वे मानते हैं कि पूंजीवाद का संकट उसकी असफलता से नहीं, उसकी सफलता से भी पैदा हो सकता है। तीसरा संस्करण, जो 1950 में आया, इस विवादास्पद लेकिन अत्यंत प्रभावशाली विचार परंपरा का अंतिम अधिकृत रूप माना जाता है। मैं आपको इस किताब से मुख्य बातें बताऊंगा। सबसे पहले, क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन पूंजीवाद की स्थायी अस्थिरता का सिद्धांत शुम्पिटर का सबसे प्रभावशाली विचार क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन है। इसका अर्थ केवल इतना नहीं कि नई कंपनियां पुरानी कंपनियों से प्रतिस्पर्धा करती हैं। उनका तर्क अधिक गहरा है। पूंजीवाद के भीतर नवाचार उत्पादन की पूरी संरचना को बदल देता है। नई तकनीक, नए उत्पाद, नए व्यापारिक तरीके और नए संगठन पुराने कौशल, पूंजीगत उपकरणों तथा स्थापित बाजारों का मूल्य घटा सकते हैं। इसलिए पूंजीवादी विकास को किसी स्थिर अर्थव्यवस्था की छोटी मोटी मरम्मत के रूप में नहीं समझा जा सकता। यह अंदर से होने वाला पुनर्गठन है। शुम्पिटर के अनुसार महत्वपूर्ण प्रश्न यह नहीं है कि व्यवस्था मौजूदा संसाधनों का प्रशासन कितनी कुशलता से करती है, बल्कि यह है कि वह नई संरचनाएं कैसे बनाती और पुरानी संरचनाएं कैसे हटाती है। इस दृष्टि से अस्थिरता केवल दोष नहीं, आर्थिक प्रगति की एक शर्त भी हो सकती है। फिर भी पुस्तक इस प्रक्रिया की मानवीय लागत को अनदेखा नहीं करती। जब कोई उद्योग सिकुड़ता है, तो रोजगार, स्थानीय समुदाय और विशेषज्ञ कौशल प्रभावित होते हैं। अतः शुम्पिटर का विचार हर प्रकार के विघटन का उत्सव नहीं है। वह बताता है कि दीर्घकालिक उत्पादकता और अल्पकालिक विस्थापन एक ही गतिशील प्रक्रिया के दो पक्ष हैं। दूसरा, आविष्कार नहीं, नवाचार को लागू करने वाला उद्यमी परिवर्तन का केंद्र है। शुम्पिटर आविष्कार और नवाचार के बीच स्पष्ट अंतर करते हैं। आविष्कार किसी नए विचार, तकनीकी खोज या वैज्ञानिक संभावना का जन्म हो सकता है, लेकिन नवाचार तब होता है जब उस संभावना को आर्थिक जीवन में लागू कर नया उत्पाद, नई उत्पादन विधि, नया बाजार, नया आपूर्ति स्रोत या नया संगठनात्मक रूप बनाया जाए। इस बदलाव का प्रमुख पात्र उद्यमी है। उद्यमी केवल पूंजी का मालिक या दैनिक प्रबंधक नहीं है, उसकी विशिष्ट भूमिका नए संयोजनों को व्यवहार में लाना है। इसीलिए आर्थिक विकास को केवल बचत, जनसंख्या या संसाधनों की वृद्धि से नहीं समझा जा सकता। विकास का निर्णायक तत्व वह पहल है जो स्थापित आदतों और हितों के विरुद्ध नया रास्ता खोलती है। शुम्पिटर यह भी समझते हैं कि सफल नवाचार की नकल होती है। प्रारंभिक लाभ धीरे धीरे प्रतिस्पर्धा और अनुकरण से कम हो सकता है, किंतु इसी दौरान अर्थव्यवस्था का स्तर बदल चुका होता है। पुस्तक में उद्यमिता को किसी नैतिक नायकत्व के रूप में नहीं, बल्कि परिवर्तनकारी आर्थिक कार्य के रूप में रखा गया है। आज के पाठक के लिए यह अंतर उपयोगी है, क्योंकि किसी तकनीक का अस्तित्व अपने आप उत्पादक परिवर्तन की गारंटी नहीं देता। संस्थागत क्षमता, वित्त, संगठन और जोखिम लेने की इच्छा उसे वास्तविक नवाचार में बदलते हैं। तीसरा, पूंजीवाद के पतन की भविष्यवाणी उसकी विफलताओं पर नहीं, उसकी सफलताओं पर आधारित है। शुम्पिटर का सबसे विवादास्पद निष्कर्ष यह है कि पूंजीवाद शायद जीवित न रह सके, लेकिन उनका कारण मार्क्सवादी तर्क से अलग है। वे पूंजीवाद को अत्यंत उत्पादक, नवाचारी और समृद्धि पैदा करने वाली व्यवस्था मानते हैं। फिर भी उनका अनुमान था कि इसकी सफलता ऐसे सामाजिक और राजनीतिक बल पैदा करेगी जो इसके संस्थागत आधार को कमजोर करेंगे। बड़े संगठनों में नवाचार का नियमित और नौकरशाहीकृत होना, उद्यमी की व्यक्तिगत भूमिका का क्षीण होना तथा पूंजीवाद के प्रति आलोचनात्मक बौद्धिक वर्ग का विस्तार उनके विश्लेषण के महत्वपूर्ण हिस्से हैं। उनका विचार था कि संपन्न समाज में पूंजीवादी व्यवस्था की वैधता और उसके जोखिमपूर्ण उद्यमी चरित्र के लिए समर्थन घट सकता है। परिणामतः समाज अधिक प्रशासनिक, सामूहिक और समाजवादी व्यवस्था की ओर बढ़ सकता है। इतिहास ने इस भविष्यवाणी को सीधे रूप में सही सिद्ध नहीं किया। विशेषकर शीत युद्ध के बाद समाजवादी व्यवस्थाओं के पतन और तकनीकी उद्यमिता के उभार ने इसे चुनौती दी। फिर भी यह तर्क आज भी उपयोगी है, क्योंकि यह पूछता है कि क्या बड़ी कंपनियां, जटिल प्रशासन और राजनीतिक असंतोष बाजार आधारित नवाचार की परिस्थितियों को बदल रहे हैं। पुस्तक की शक्ति निश्चित भविष्यवाणी में नहीं, बल्कि समृद्धि और संस्थागत आत्मक्षरण के बीच तनाव को पहचानने में है। चौथा, समाजवाद को शुम्पीटर नैतिक आदर्श नहीं, केंद्रीकृत आर्थिक प्रशासन की समस्या के रूप में परखते हैं। पुस्तक में समाजवाद की चर्चा केवल पूंजीवाद विरोधी नारे के रूप में नहीं होती। शुम्पीटर इसे ऐसी व्यवस्था के रूप में परिभाषित करने का प्रयास करते हैं जिसमें उत्पादन के प्रमुख साधनों और आर्थिक निर्णयों पर सार्वजनिक नियंत्रण हो। उनका प्रश्न यह है कि क्या ऐसी व्यवस्था बड़े पैमाने पर उत्पादन, वितरण और समन्वय को संचालित कर सकती है। वे स्वीकार करते हैं कि आधुनिक अर्थव्यवस्था में बड़े संगठन, लेखांकन और प्रशासन समाजवादी नियोजन को तकनीकी रूप से अधिक संभव बना सकते हैं। साथ ही उनका मुख्य संदेह यह है कि केंद्रीकृत प्रशासन नवाचार, प्रयोग और उद्यमी पहल को किस हद तक बचा पाएगा। बाजार में लाभ और हानि केवल निजी आय के संकेत नहीं होते, वे यह भी बताते हैं कि कौन से प्रयोग टिकाऊ हैं और किन संसाधनों को दूसरी दिशा में जाना चाहिए। यदि यह संकेत प्रणाली कमजोर होती है तो निर्णय अधिक राजनीतिक या नौकरशाहीकृत हो सकते हैं। शुम्पीटर समाजवाद को अनिवार्यतः अराजक या असंभव नहीं कहते, किंतु वे इसके आर्थिक और राजनीतिक परिणामों को लेकर सतर्क हैं। उनका विश्लेषण वितरणात्मक समानता और आर्थिक गतिशीलता के बीच संभावित तनाव सामने रखता है। इसलिए पुस्तक समाजवाद पर सरलीकृत प्रशंसा या निंदा नहीं देती, बल्कि प्रशासनिक क्षमता, स्वतंत्र पहल और जवाबदेही के कठिन संबंध की जांच करती है। अंत में, लोकतंत्र जन इच्छा का प्रत्यक्ष शासन नहीं, मतों के लिए राजनीतिक प्रतिस्पर्धा है। शुम्पीटर लोकतंत्र की पारंपरिक धारणा पर प्रश्न उठाते हैं, जिसमें माना जाता है कि जनता पहले एक स्पष्ट सामूहिक इच्छा बनाती है और प्रतिनिधि उसे लागू करते हैं। उनके अनुसार वास्तविक लोकतंत्र में राजनीतिक नेता और दलमत प्राप्त करने के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं। इस अर्थ में लोकतंत्र एक ऐसी संस्थागत व्यवस्था है जिसमें निर्णय लेने की शक्ति पाने के लिए प्रतिस्पर्धात्मक संघर्ष होता है। यह दृष्टि राजनीतिक प्रक्रिया को बाजार के समान पूरी तरह नहीं मानती, लेकिन प्रतियोगिता, नेतृत्व और मतदाता चयन की भूमिका पर जोर देती है। शुम्पीटर मतदाताओं की जानकारी, ध्यान और दीर्घकालिक विवेक को लेकर संशय रखते हैं। उनका तर्क है कि जटिल सार्वजनिक मुद्दों में नागरिकों की रुचि और ज्ञान सीमित हो सकते हैं, जिससे नेता जनमत को केवल प्रतिबिंबित नहीं, आकार भी देते हैं। इसीलिए लोकतंत्र की गुणवत्ता संस्थाओं, कानूनी सीमाओं, प्रतिस्पर्धी नेतृत्व और शांतिपूर्ण सत्ता परिवर्तन पर निर्भर करती है। पुस्तक पूंजीवाद और लोकतंत्र को एक ही चीज नहीं मानती। दोनों साथ रह सकते हैं, पर दोनों का संबंध तनावपूर्ण भी हो सकता है। शुम्पीटर की अवधारणा बाद के पब्लिक चॉइस चिंतन के लिए महत्वपूर्ण आधार बनी। आज यह विचार चुनावी वादों, मीडिया प्रभाव और नीति निर्माण को समझने का उपयोगी, यद्यपि जानबूझकर कठोर ढांचा देता है। निष्कर्ष में, कैपिटलिज्म, सोशलिज्म एंड डेमोक्रेसी उन पाठकों के लिए विशेष रूप से उपयोगी है जो नवाचार, आर्थिक विकास, बाजार व्यवस्था, राज्य और लोकतांत्रिक राजनीति के संबंध को सतही नारों से आगे समझना चाहते हैं। अर्थशास्त्र, राजनीति विज्ञान, सार्वजनिक नीति, इतिहास और व्यवसाय रणनीति के विद्यार्थी इससे लाभ उठा सकते हैं। उद्यमियों और नीति निर्माताओं के लिए भी इसका केंद्रीय पाठ प्रासंगिक है। नई तकनीक या नई कंपनी का प्रभाव केवल एक बाजार तक सीमित नहीं रहता, वह रोजगार, संस्थाओं, शक्ति संतुलन और सामाजिक अपेक्षाओं को बदल सकता है। पुस्तक का बौद्धिक लाभ यह है कि यह पूंजीवाद की प्रशंसा और आलोचना को साथ रखती है। शुम्पीटर पूंजीवाद की नवाचारी क्षमता को गंभीरता से दिखाते हैं, पर उसकी दीर्घकालिक सामाजिक वैधता को स्वतः सिद्ध नहीं मानते। वे समाजवाद को भी केवल आदर्श या भय के रूप में नहीं, बल्कि संगठन और प्रोत्साहनों की व्यावहारिक समस्या के रूप में देखते हैं। इसी तरह लोकतंत्र को वे नैतिक घोषणा के बजाय प्रतिस्पर्धी राजनीतिक प्रक्रिया के रूप में परिभाषित करते हैं। समान विषय की अनेक पुस्तकों की तुलना में इसकी विशिष्टता तीन व्यवस्थाओं को अलग अलग खांचों में न रखकर उनके परस्पर प्रभाव का विश्लेषण करना है। इसकी कुछ भविष्यवाणियां इतिहास से मेल नहीं खाती और इसकी भाषा तथा तर्क पाठक से धैर्य मांगते हैं। फिर भी क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन, उद्यमिता और राजनीतिक प्रतिस्पर्धा के इसके ढांचे आधुनिक आर्थिक परिवर्तन पर विचार करने के लिए असाधारण रूप से टिकाऊ उपकरण प्रदान करते हैं। यदि आप समर्थन करना चाहते हैं जोसेफ ए. शुम्पीटर, आप इस किताब को पॉडकास्ट डिस्क्रिप्शन में दिए गए Amazon लिंक से खरीद सकते हैं। किताब पढ़ने के बाद मुझे जरूर बताएं कि आपको यह कैसी लगी और अपने विचार शेयर करें। फिर मिलते हैं।